यज्ञ सेवा में जिन्होंने न सिर्फ अपने तन को लेकिन समय श्वास संकल्प सर्व शक्तियों को समर्पित कर दिया, ऐसी यज्ञ की विशेष आत्मा परम आदरणीय राजयोगी करुणा भाई जी आज हम सभी के बीच में हैं। हम सब बड़े प्यार से एक हाथ की ताली से आपका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। बचपन से ही आप बाबा के बन गए, बहुत ही छोटी आयु में आपने बाबा और मम्मा को देखा, उनकी बहुत समीप से पालना ली और युवावस्था में आपने अपने संपूर्ण जीवन को यज्ञ सेवा के अंदर समर्पित कर दिया। बाबा ने आपके द्वारा देश और विदेश के अनेक सेवा स्थानों को खुलवाने की स्थापना कराने की सेवा की और अभी आप सभी पिछले 8-10 साल से देख रहे हैं कि मीडिया जो सेवा कर रहा है, आप देखते हैं ना, जहां तहां भी देखो पीस ऑफ माइंड हाँ, और चैनल्स के ऊपर बाबा का ज्ञान, बहनों के प्रवचन, विद्यालय की प्रसिद्धि, उसका श्रेय बाबा आपको दे रहे हैं। हम सब तालियों से भाई जी की इस हिम्मत को अभिनंदन देंगे। मुझे याद है बहुत सालों पहले ओम शांति भवन में जयंती बहन ने बाबा को प्रश्न पूछा था, तब हम वहां सामने बैठे थे कि बाबा कितना बड़ा विश्व है, कैसे आपकी प्रत्यक्षता होगी। तो बाबा ने एक ही वाक्य में तब उत्तर दिया था और कहा था कि प्रत्यक्षता में एक पार्ट होगा मीडिया का और दूसरा पार्ट होगा आप बच्चों की मनसा सेवा का, इससे बाप प्रत्यक्ष होगा। तो आज हम सभी देख रहे हैं कि प्रत्यक्षता के वह बीज तो चारों ओर पड़ ही गए हैं। आप मीडिया विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और आपकी सबसे बड़ी विशेषता यज्ञ के वरिष्ठ भ्राता होते हुए भी आप पूर्ण नम्रचित और सरल स्वभाव के स्वामी हैं। आज हम सभी सुनेंगे समर्पण मयता से संपूर्णता, आदरणीय करुणा भाई जी।
ओम शांति। जो भी बहन जी ने सुनाया मैंने नहीं सुना। आज का पहला सब्जेक्ट जो है समर्पण से संपूर्ण, वो पहला जो इस समय पर जैसा समर्पण का जो विधि है वो हमारा हुआ ही नहीं है, ना हमको कभी भाई कहे कि ये समर्पण करने का है, विधि है या सम्मान है, ये हमारी अभी तक नहीं हुआ है। तो इसीलिए हम आप सब के पीछे हैं। बाकी संपन्न बनने के लिए तो हमारे लिए सौभाग्य रहा बाबा के साथ रहने का, मम्मा के साथ रहने का, दादी प्रकाशमणि जी के साथ रात दिन रहने का, दीदी मनमोहिनी जी के साथ रहने का, तो वो सौभाग्य मिला। तो इसीलिए रात दिन हमारी जो है एक ही लक्ष्य है कि संपन्न बनना है। तो आपने ये भी बताया कि भाई मीडिया से बाबा की प्रत्यक्षता होगी, परंतु साथ में जो हम बच्चों की मनसा शक्ति से बाबा की प्रत्यक्षता होगी, तो मुझे ज्यादा उसमें इंटरेस्ट है। क्योंकि टीवी में संदेश दे सकते हैं, बहुत अच्छा, हमारी शिवानी बहन भी बहुत अच्छी संदेश दे रही है, दादियों का भी सुनते हैं, सुबह मुरली भी सुनते हैं, परंतु हमारे टीचर्स ये कहते हैं कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं ना, तो वो क्लास में रेगुलर मुरली सुनने में ही उनको आनंद आता है, ऐसा जो समझते हैं वो हाथ उठावे। देखो, थैंक यू। तो इसलिए जो प्रत्यक्षता की जो बात है मीडिया से होगी, संदेश मिल गया, ठीक है, आप सब यहां तक पहुंच गए। हम हर सीजन में लोगों से हाथ उठाते हैं, लगभग 60% लोग ये कहते हैं हाँ हमने टीवी में देखा था, संदेश मिला था, तो आए, पर आए, यहां आए। तो इसलिए अभी जो बाबा जो चाहते हैं, बाबा की बस एक ही आशा है हम बच्चों के ऊपर ही है। तो मैं कभी कभी बोलता हूं तो मुझे भी थोड़ा सा ऐसा होता है कि बाबा के पास भी एक कमी है, भगवान के लिए ऐसा कहे कि भाई भगवान के लिए भी कुछ कमी है, क्या है, शरीर नहीं है। तो कभी कभी हंसते हुए कहते थे अच्छा आपको सिर दर्द है, हाँ शिव बाबा के वो भी सिर होता मालूम पड़ता सिर दर्द क्या होता है। तो पर शरीर हम बच्चों को दिया है, जो हम दृष्टि दे सकते हैं, संकल्प से हम किसी आत्मा को सकाश दे सकते हैं, मुख से भी बोल सकते हैं, नहीं तो बाबा को देखो, ब्रह्मा बाबा कहते थे मैं चलते चलते ब्राह्मण फाता, रास्ते में चलते मुझे बाबा ने पसाया, ऐसा कहते हैं, क्यों, क्योंकि मुख चाहिए था बाबा को, ब्रह्मा मुख वंशावली, मुख चाहिए था। तो बाबा के लिए बहुत बड़ी कमी है ये शरीर नहीं है। परंतु बाबा के आज के दिन 10 लाख बाबा के बच्चे हैं, सब बाबा के बच्चे हैं। तो ये जितने भी ये शरीर है ये किसके हैं, बाबा के, हाथ उठाओ, अरे बाप रे बाबा आपको कितने शरीर है देखो ना। तो कमी कहेंगे नहीं, बाबा को हम सब बच्चे तन से हम सब मानते हैं, हम बाबा के हैं। तो इसीलिए दादी का जो पहला मंत्र हमको बहुत अच्छा लगता है, दिल से कहती है दादी मेरा बाबा, है ना, बहुत अच्छा लगता है ना, मेरा बाबा। तो बाबा को हम इतने सब बच्चे हैं, हम सब बच्चों ने कह दिया है बाबा, सिर्फ हम नहीं, हमारे जो भी रचना है वो भी सब आपके है, हमारा नहीं है भाई। तो सब ने बाबा को समर्पित कर दिए हैं। हम लोग तन से तो पूरी तरह से सुबह से शाम तक हम लोग पक्के हैं हम बाबा के हैं, बाबा हमारे हैं। बाकी समर्पण जो कहते हैं, शरीर से समर्पण जो है वो तो बहुत सहज है, हम सब ने समर्पित कर दिए हैं। परंतु समय पर एक बात याद आती है मुझे, तो ब्रह्मा बाबा का, बाबा कहते थे कि मैं जब स्नान करता हूं ना तो मैं यही याद करता हूं कि ये जो हुसैन का घोड़ा है इसका मैं सफाई कर रहा हूं, क्लीन कर रहा हूं, ऐसे बाबा कभी कभी ये बोलते थे। तो शरीर का तो हम लोग बाबा को अर्पित कर दिए, परंतु मन से बाबा को अर्पित करना, मन और शरीर ये दो चीज है। शरीर बाबा को अर्पित सहज कर दिया हम लोगों ने, उसमें कोई हमको प्रॉब्लम नहीं रहा, बस हम बाबा के हैं। परंतु मन जो है ये थोड़ा सा अपने हिसाब से चलता है। हमको जब मम्मा प्रवचन करती थी ना बहुत क्लियर, क्योंकि बाबा तो सागर है, मुरली कहीं से शुरू होता है कहीं तक पहुंच जाता है, परंतु मम्मा कभी एक पॉइंट लेती थी तो एक ही पॉइंट पर सर्वव्यापी, तो पूरी सर्वव्यापी पर समझा देगी। तो ऐसे मम्मा कभी मन के ऊपर जब समझाती थी तो उसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों, व्यर्थ और समर्थ, ये सब मन की बात है। तो ये मामा हम बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाते थे। थोड़ा कुछ मुश्किल है जो ईश्वर को समर्पित करने में, वो मन की बात है, बुद्धि के लिए नहीं कहते हैं। बुद्धि बहुत होशियार है, जज है वो, जो अच्छा है वो ले लेता है फटाक से। ज्ञान देखो कितना अच्छा लगता है, हम सबको बहुत अच्छा लगता है ज्ञान, हम सब बुद्धिमान हैं। बाबा के ज्ञान ऐसा अच्छा लगता है, इसका वर्णन करने में इतनी खुशी होती है। तो बुद्धि से हमको समर्पण होने में इतना प्रॉब्लम नहीं, अरे भगवान को नहीं समर्पण होगा तो और किसको होंगे, तो बुद्धि बहुत होशियार है, बुद्धि समर्पण हो सकता है। परंतु ये मन जो है ये थोड़ा सा हम लोगों को प्रॉब्लम करता है। पूरी जिंदगी में आप देखो ज्यादा जो खेल है ना ये मन का है। जब ज्ञान से ही समझ आ जाए तो फिर ये जो जंगल में जाओ और वहां बैठो तपस्या करो ये सब किस बात के लिए है, ये बुद्धि के लिए नहीं है, ये मन के लिए है। हरेक आप थोड़ा सा देखेंगे कि मन कई बार हमको ही नहीं मालूम है कि भाई वो क्या क्या सोच रहा है, तो हमको ही कहना पड़ता है बाबा ये क्या सोच रहे हैं। तो अपने ही मन को हम लोगों को क्वेश्चन करना पड़ता है, भाई चुप रहो, थोड़ा तो शांति रखो, जैसे किसी और को सुना रहे हैं वैसे हम अपने ही मन को, उस पर दुश्मनी भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरा ही मन है। तो हमारी जयंती बहन बहुत अच्छी भाषण करती है एक टॉपिक पे, मेक योर माइंड ए गुड फ्रेंड, आपका सबसे अच्छा दोस्त हो वो आपका मन है, इससे दोस्ती करो, उससे दुश्मनी नहीं, उसको बोलना नहीं, डांटना नहीं, क्योंकि अपना ही मन है। तो जितना हम अपने मन को अपने हिसाब से जैसे हम चाहते हैं ऐसे इसको चलाए, तो ये एक बहुत बड़ी आर्ट है जिसको ही हम राजयोग कहते हैं। राजा कोई सिंहासन तो है नहीं, जो मन को हम जैसा चाहे वैसे चला सके तो वो है सच्चा योग। इसीलिए हम कहते हैं सहज योग या राजयोग, मन से बाबा को याद करने का, या जैसे हम चाहे वैसे मन को चलाए, मन में सोचे, तो वो है हमारी साधना। तो आज की यही सब्जेक्ट है कि समर्पण किस बात का, शरीर तो सेकंड में, सब बाबा का है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बुद्धि ज्ञान इतना अच्छा है, बाबा जो कहे वही, श्रीमत मुरली बहुत अच्छा। कोई प्रश्न होता था तो हम कहते थे, बाबा खुद कहते थे, बच्चे थोड़ा मुरली पढ़ते रहेंगे ना, सुनते रहेंगे तो सब प्रश्न हल हो जाएगा। कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपका उत्तर नहीं मिले, अचानक आपको एकदम उत्तर मिल जाता है। तो इसलिए हमको बुद्धि को भी ईश्वर को समर्पण करने में कोई तकलीफ नहीं हुई। थोड़ा कुछ अभी तक भी है तो मन अपना कभी कभी थोड़ा सा करता है। तो इसीलिए इस समर्पण में ही नंबर वार है। ये जो हम कहते हैं ना, 8 नंबर, 108, 16108, ये जो नंबर जो है ये मोस्टली मन का। तो मुझे सौभाग्य मिला ब्रह्मा बाबा का, तो हम बहुत ज्यादा ब्रह्मा बाबा के लिए सोचते इसलिए नहीं थे कि भाई मेरी थोड़ी भावना, क्योंकि दक्षिण से मैं आया हूं, बेंगलोर कर्नाटक से, तो वहां ज्यादा भावना है। तो बाबा को देखते ही शिव बाबा ही याद आता है, बाकी कुछ नहीं। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा के बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते थे। तो शिव बाबा है ना इसमें, तो ब्रह्मा बाबा के मन के बारे में हम लोग कभी भी, मैं तो कभी भी नहीं सोचता था। बाबा माना शिव बाबा, ऐसा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा, ये दो अंतर भी मुझे नहीं लग रहा था। जब भी बाबा को देखता, बाबा की दृष्टि में शिव बाबा नजर आता। जब बाबा मुरली चलाते, शिव बाबा मुरली। और जो ब्रह्मा बाबा जिस तरह से सुबह से शाम तक करते थे, 100% जो बाबा कहे एक्यूरेट हर प्रकार से। फिर भी ब्रह्मा बाबा को हम फॉलो करें, थोड़ा सा ये लगता था कि नहीं, ये तो स्वयं भगवान है तो हम कैसे। परंतु मम्मा हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल थी, जो बाबा को नंबर वन फॉलो किया है तो वो मम्मा थी। तो इसीलिए मम्मा में हमको प्रयास कैसे करना है, पुरुषार्थ कैसे करना है, समर्पण कैसे होना है, वो हमको देखने में खास मम्मा से मिला। और फॉलो मम्मा को करने में हम लोगों को थोड़ा सा इजी होता था। और कोई बात बोलना, पूछना, डायरेक्शन लेना मम्मा से सहज हो जाता था। बाबा के पास थोड़ा सा डरते थे, बाबा स्वयं भगवान है उसमें भाई, सतगुरु की भावना। तो मम्मा में हमने क्या देखा, जो मन को पूरी तरह से जीता हो तो नंबर वन मम्मा को कहते थे। बाबा भी कहते थे मम्मा नंबर वन, हालांकि मम्मा एक्सेप्ट नहीं करती थी, क्लास में ही सबके सामने बोलते थे, मम्मा बाजू में बैठी है, और बाबा कहते थे मम्मा नंबर वन, मम्मा नंबर वन। मम्मा कभी भी नहा नना कभी नहीं, मम्मा नीचे ऐसे देखती है, एक्सेप्ट भी नहीं करती। पर बाबा ये जरूर कहते थे मम्मा के लिए ये नंबर वन। तो मन को जीतना है, मन को समर्पित करना है, तो उसके लिए मम्मा में ऐसी क्या विशेषता थी। तो मम्मा के लिए कहा जाता था अंतर्मुखी, इंट्रोवर्टनेस कहते हैं हम लोग। जब भी मम्मा को देखो, भले सामने देख रही है सब कुछ है, पर मम्मा को नहीं दिखता, मम्मा स्वयं जैसे अंतर्मुखी होते। जब भी कहीं भी देखे मम्मा, बाहर क्या हो रहा है वो मम्मा को नहीं दिख रहा था। एक बार ऐसे ही मम्मा से, मम्मा को जब कार में ड्राइव करके रमेश भाई ले जा रहे थे, और भी भाई बैठे थे साथ में, तो सामने बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट आजकल जो होते हैं ऐसे, बहुत बड़ा एक मूविंग एडवर्टाइजमेंट था, एकदम नया था बॉम्बे में बड़ा। तो सबने देखा, देखो कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। तो क्रॉस किया तो मम्मा से पूछा, मम्मा आपने देखा वो एडवर्टाइजमेंट कैसे है? मम्मा ने एक ही जवाब दिया, वो आज तक सदा माइंड में बैठ गया। मम्मा ने कहा, मैंने नहीं देखा, इस कलयुग की कोई भी सीन मम्मा को नहीं दिखता है, बाहर के कोई भी चीज मम्मा को नहीं दिखता है, मम्मा जो चाहे वो दिखती है, बाकी क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा अनुभव हुआ है एक बार, वैसे मम्मा मुझे देखते ही तुरंत बुलाती है, आओ बच्चे। तो एक दिन जब मैं आया गेट तक, तो मम्मा ऐसे हॉल के अंदर ही आना जाना करती थी, तो मैं खड़े हुए देख रहा हूं, मम्मा आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, तो जब भी देखेंगे मम्मा कहा आओ बच्चे, परंतु मम्मा बोले ही नहीं। मैंने कहा मेरे से क्या गलती हुई, मैंने आज क्या ऐसा किया जो मम्मा नहीं मुझे बुला रही है? तो अचानक जैसे मम्मा को ख्याल आया, अरे करुणा खड़े है, आओ आओ अंदर आओ। तो इससे ऐसा लगा कि भाई मम्मा देखा नहीं, तो मम्मा को अभी मैंने दिखाई दिया, तो मुझे ये तो खुशी हुई कि भाई मम्मा ने देखी तो सही। परंतु ये चलता रहा, ये जो 5 मिनट मम्मा आई और गई, देखी नहीं है, तो क्या स्थिति था ये? तो जिसको हम कहते हैं अंतर्मुखता। तो अंतर्मुखी जो होते हैं उसके साथ अपना मन होता है, क्योंकि ये मन ही खेल करता है, पहले जो भी दिखती है ना ये मन को पहले दिखता है। सोचना कौन है क्या है वो बुद्धि का बाद में है, पहले जो भी देख रहा है मन देख रहा है, फिर इसमें धीरे से आप जाओ ये कौन है ये क्या है, तो वो फिर दूसरा एक्शन है, पर दिखता तो सब कुछ है। तो इसीलिए ये मन को न दिखे, देखते हुए न देखना, सुनते हुए न सुनना, ये जो पाठ है ये हमने मम्मा में देखा था। मम्मा जो खुद चाहे वही देखती थी और वही सोचती। तो इसीलिए इस समय पर हम बच्चों को भी थोड़ा सा अंतर्मुख, ये जो आप लोगों को बुला करके यहां बिठा रहे हैं, कमेंट्री देके अभी क्लास करा रहे हैं, ये यही एक्सरसाइज है, जो आपका मन और कहीं नहीं जाए तो बाबा से लगे रहे। इसीलिए जो समर्पण जिसको हम कहते हैं, वो मन को जितना समय हम बाबा के साथ रख सकते हैं, बाबा के श्रीमत अनुसार उसको चलाते हैं, बाबा जो कहे ऐसे उसको चलाते हैं, तो इसके लिए ही हमको चाहे जो अमृत वेला की योग, जो फ्रेश माइंड में बाबा को याद करे, ताकि उसको एक आदत कराना पड़ रहा है, जो एडिक्शन जो शब्द है इस समय पर, वो मन के लिए कहा जाता है, किसी को चाय पीने का, किसी को कोई भी किसी भी प्रकार की आदत हो, लाइफस्टाइल में, खाने पीने में, दोस्ती, हर चीज में जो आपको अच्छा लगता है, माना ये मन की एडिक्शन है, मन को ये अच्छा लगता है, इसलिए वो सब कुछ करते हैं। तो जैसे शराब की एडिक्शन के लिए मेहनत करते हैं हम लोग, बड़ी प्रोपोगंडा करते हैं हम, लोगों का आदत छुड़ाते हैं, ऐसा वैसा गुटखा ये वो ये सब चीजें, पर हम लोगों को बाबा ने पहले से ही ये कहा है, ये मन भी जो है इसको भी कई आदत हो गई है, मुझे ये अच्छा लगता है ये नहीं अच्छा लगता है। आप जितना उसकी अपनी ही मन की शोध करेंगे तो आपको धीरे धीरे वो सब मालूम पड़ जाएगा, अच्छा ये बात है। नहीं तो हम लोग नॉर्मल चल रहे हैं, हमको पता ही नहीं है कि भाई सचमुच हमारी मन को क्या क्या अच्छा लगता है,
क्या नहीं अच्छा लगता है, ये सब बातें जो है इस पे हम लोग कभी सोचा ही नहीं है। हम तो चल रहे हैं, बस हमको जो जो करना है करते जा रहे हैं और हम समझते हैं बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। परंतु असली बात यह है कि हमारा मन को भी कई चीज, जैसे वेजिटेरियन का भी, तो जिनको नॉन वेज है उनको वेजिटेरियन बनने में कुछ तो टाइम लगता है। हर चीज, छोटी छोटी चीज भी आप देखेंगे उसमें आपको मालूम पड़ जाता है मेरे मन की एडिक्शंस क्या क्या है। तो इसलिए मैं मन के लिए तीन एग्जाम्पल सदा ही याद रखता हूं। एक है मीरा, दूसरा है नारद, भक्त श्रेष्ठ कहा जाता है उनको, और तीसरा हनुमान। ये तीनों की मन की बातें, बाकी कुछ भी नहीं। इन तीनों में आप देखेंगे हमारी ही मन की ये तीन रूप है। नारद के लिए तो आपको मालूम है, जैसे हम बच्चों को जब भी चाहे आप शिव बाबा के पास जा सकते हैं, ब्रह्मा बाबा के पास जा सकते हैं, मधुबन में जा सकते हो, जहां आप चाहे जा सकते हो। नारायण कहां पहुंच गया, बहन जी ने कमेंट्री दी, पहुंच गई, जहां चाहे पहुंच सकते हैं हम लोग, बहुत सहज सरल। बेटे यहां है पर अमेरिका जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हैं। यह हमारे नारद जी की योग है, ये मनसा की स्थिति है। बहुत अच्छी अच्छी बातें हम सोचेंगे तो जैसे नारद जी सदा ही ब्रह्मा विष्णु शंकर जहां भी जाए जा सकते हैं, तो ऐसे हम बच्चे भी इतना तो होशियार है अभी, हम सबको मालूम हो गया कि भाई कौन सी स्थिति है। बाबा ने कहा था जैसे यहां आते हैं तो यहां भी देखो, शांति स्तंभ है, हिस्ट्री हॉल है, बाबा का कमरा है, कुटिया है। तो इतनी बार आप जाएंगे वो जैसे आपके माइंड में वो बैठ जाएगा। तो आप जाने के बाद भी एकांत में बैठिए तो आप जहां चाहे वहां जा सकते हो, कोई तकलीफ नहीं। वो एक स्टेज है। दूसरी स्टेज थोड़ा सा सूक्ष्म का, बाबा ने कहा कि पहले पहले अपने आप को आत्मा समझकर धीरे से ऊपर जाते हैं, जहां हमारी एडवांस पार्टी में सभी है, बाबा मम्मा दादियां, जब भी संदेशियां जाएंगे ये सब वहां ही है। तो हम भी थोड़ा सा संदेशी बन करके जब भी आप जाएंगे आपको सूक्ष्म वातन में ये सब मिलेंगे। ये सूक्ष्म, थोड़ा सा सूक्ष्म है ये। उससे आगे, क्योंकि अभी तक जो हम शब्दों से जो योग करते हैं ना, कमेंट्री से, तो उसका एक स्टेज थोड़ा सा एडवांस करते हैं हम लोग, विजन। तो जो आप सोचते हैं वो विजन आपको दिखे, दिखना चाहिए। वो स्थूल का तो दिख रहा है, ये जो चार धाम है ये तो चार धाम का बिल्कुल क्लियर आपको दिख रहा है, कुटिया एकदम दिखेगा, बाबा का कमरा, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, वो दिख रहा है सब। यहां तक हमारी डायमंड हॉल है नीचे अव्यक्त बाबा से मिलने का, जब चाहे आप अव्यक्त बाबा से मिल सकते हैं। परंतु ये जो स्टेज है ये थोड़ा सा सूक्ष्म है, इसमें अपने आप को भी थोड़ा सा वो जो प्रकाश में ड्रेस पहनना पड़ेगा, मैं इस शरीर से न्यारे। तो ये जो दादी का जो तीन शब्द है, मेरा बाबा एक सेकंड में, शिव बाबा दूसरा कोई बाबा नहीं है हमारा, ब्रह्मा बाबा नेक्स्ट है, बट पहला मेरा बाबा कहते ही एक सेकंड में शिव बाबा याद आएगा, ज्योति स्वरूप याद आएगा। आखिर हमको दुनिया को भी शिव बाबा का दिखाना है, ब्रह्मा बाबा ये सब हिस्ट्री है, बाकी प्रत्यक्षता जो करनी है वो शिव बाबा का। तो मेरा बाबा कौन है, वो निराकार ज्योति स्वरूप। तो मन एकदम बाबा निराकार, मेरा बाबा, मेरा बाबा। पर जो दूसरा जो शब्द है मीठा बाबा, तो उसमें मुरली में बाबा ने कहा है मीठा बाबा, तो मुरली में बोलने के लिए ब्रह्मा बाबा तो चाहिए, तो मीठा बाबा कहते ही बाबा का कमरे याद आ जाता है, ब्रह्मा बाबा याद आते हैं। जो यहां दोनों चित्र है देखो, आपका स्वागत करने के लिए बाबा का हाथ ऐसे, तो ये पोज भी मीठा बाबा का है। ये ब्रह्मा बाबा भी है, शिव बाबा भी है, बोल शिव बाबा रहा है परंतु ब्रह्मा बाबा का भी है। तो इसीलिए कभी कभी हमारी जानकी दादी का है ना, तो यही एक दिन मैं दादी के साथ था ओआरसी में, तो सारे वीआईपीस को बुलाए हुए हैं, दोनों दादियां बैठे हैं। जैसे ही दादी को कहा आप बोलो दादी, सब वीआईपीस है आए हैं यहां के, दादी कहती है ब्रह्मा बाबा का चित्र नहीं है। दादी को कहा आप कुछ बोलो वीआईपीस को, पर दादी कहती है ब्रह्मा बाबा का चित्र नहीं है। तो बोला जाओ क्लास से वहां से ले आके पहले यहां रखो। तो हमारी जानकी दादी को मीठा बाबा इतनी याद है, तो कहती है मैं ब्रह्मा बाबा से और शिव बाबा से मेरा डिफरेंस नहीं है, दोनों का एक जैसा प्यार है मेरा। तो ब्रह्मा बाबा का चित्र नहीं देखती है तो उनको अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ शिव बाबा आप रखते हैं तो जानकी दादी को अच्छा नहीं लगता, दोनों चाहिए, मेरा बाबा और मीठा बाबा। तो इसलिए मीठा बाबा कहते ही ब्रह्मा बाबा की दोनों, बाबा का कमरा भी याद आ जाता है और बाबा हमको स्वागत कर रहा है सूक्ष्म वतन में वो भी याद आता है। ये सब मन की बात है, ये सब मन के लिए है। और तीसरा प्यारा बाबा, आप कहेंगे ब्रह्मा बाबा का तो हमने देखा नहीं, शिव बाबा को याद कर रहे हैं, पर जो प्यारा बाबा उनसे मिलने के लिए भागे भागे आते हैं डायमंड हॉल में। बाबा आते ही बाबा आ गया, जो बाबा की प्यार जो मिलता है उस समय पर उसकी कोई वर्णन नहीं है। खींच खींच के आते हैं, हर साल आते हैं, हर एक से पूछते हैं कितनी बार आए, अनगिनत, हर साल आना है भाई। तो क्या है, क्या खींचता है वो प्यार बाबा का, दृष्टि देते ही देखते रहो। विदेशी अमेरिका में बैठे हैं, अफ्रीका में बैठे, ऑस्ट्रेलिया, वो कहते हैं हमको सभा नहीं दिखाइए, सिर्फ बाबा दिखाओ, बस बाबा की आंख दिखाओ कहते हैं। तो वो प्यारा बाबा का जो सीन है वो जब भी हम बस डायमंड हॉल याद आता है, वो एक बाबा याद आता है। तो इसीलिए हम बच्चों को मन में थोड़ा सा विजन भी रहे, कमेंट्री जरूर हो परंतु साथ साथ में दिखता है ना, तो उसमें जो ताकत है मन टिक जाता है, मन को भी अच्छा लगता है। इसको अभी हम लोगों ने इतना समय से मन को ये सीन पक्का कर दिया है, जितना मन को इन सीनों में हम लगाते हैं तो मन को सहज उसमें टिक जाता है। शब्दों के साथ थोड़ा सा चित्र भी होता है, तो बाबा इसीलिए लक्ष्मी नारायण का बैज, लक्ष्मी नारायण का चित्र, श्री कृष्ण का चित्र, क्योंकि मन में छप जाता है। मन में हमको कंटिन्यूअसली इस प्रकार के जो चीज अच्छा लगता है उसको थोड़ा सा और देखिए, उसके बारे में और सोचिए, तो मन को थोड़ा सा जैसे जो अच्छा लगता है। तो इस तरह से जैसे बच्चे को आपको सिखाना पड़ता है यही राइट है, इसको यही सिखाना है, तो हम बच्चे को किस तरह से सिखाते हैं, तो इसी प्रकार अपनी मन को भी, क्योंकि मन अभी तक अपनी मर्जी से चलता रहा, जो जो इसको कुछ पास्ट संस्कार समझो या इस समय जो दुनिया में चल रही है वो समझो, खाने पीने सभी इंद्रियों का, सब चीजों से मन ने बिल्कुल हमको अपना दास बना दिया है, दूसरे किसी ने नहीं बनाया हमको, हमारा ही मन। तो कभी कभी गीता पढ़ते थे समझ में नहीं आता था ये गीता में ये क्यों कह रहे हैं कि आत्मा ही अपना मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। मैं अपना शत्रु कैसे बनेगा? सुबह से शाम तक मैं अपने लिए ही कर रहा हूं सब कुछ, जो भी हम कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, तो शत्रु कैसे बना? तो जब सुनते थे समझ में नहीं आता था, पर जब बाबा ने मन के लिए थोड़ा सा कहा, बच्चे मन समर्पित करना इतना आसान नहीं है, तो नारद से भी नंबर वन मीरा को इसीलिए कहा गया, मीरा का त्याग के सामने किसी का कुछ नहीं है। उनके पास क्या कमी थी? रानी थी, सब कुछ था, सारी दुनिया थी उनके लिए, पर ऐसा त्याग लिया उसने, नहीं मेरा गिरिधर गोपाल और कोई नहीं। तो मीरा को देखते ही कृष्ण की याद आती है। तो नारद की भक्ति वो दूसरी है, परंतु मीरा की इसीलिए याद आती है, सब कुछ त्यागते हुए, सब कुछ है, जो जो मन को अच्छा लगता है इस दुनिया का वो सब चीजें है, परंतु उसको मन से निकालकर एक शिव बाबा, नहीं अभी तो वही, तो सारी दुनिया में नंबर वन मीरा की भक्ति का है। माना मन को सबसे अच्छा लगता है तो उसी पर ही मन लगे रहे, जो हमारी ये सारा जो योग की साधना है मन समर्पित करने के लिए हम बच्चों को ये सिखाया जाता है। तो इसीलिए मन को हम किस तरह से बाबा और बाबा की चरित्र में, बाबा जो जो कहते हैं जो हमको अच्छा लगता है उस पर टिक जाना, थोड़ा सा मन को सिखा, देखो ये कितना अच्छा है, ये अपने को ही बता देना अंदर से, ये कितना अच्छा है, देखो ये कितना अच्छा है, तो उस बात पर मन को टिकाते, क्योंकि मन सदा ही वो ढूंढता रहता है कुछ और चीज, एक चीज पे रहने की आदत ही नहीं है उसको। तो इसीलिए हर बार हर घड़ी हम बच्चों को मन के लिए थोड़ा सा, जैसे बच्चे को संभालते हैं एज ए गुड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, अब हम मन जैसे कहे ऐसे नहीं चलना है, हमको बाबा जैसे हमको चला रहा है ऐसे मन को भी साथ में लेके चलना है। चल बाबा चल, अभी यहां जाना है, अभी योग चल रहा है, अभी ये चल रहा है, नहीं तो मन कहेगा ठहरो ना, अभी थोड़ा सा ये करें। अमृत वेले यही होता है ना, चलो आज एक दिन थोड़ा सा तो रेस्ट कर ले, कोई बात नहीं कल कर लेंगे, दिन में थोड़ा सा और ज्यादा कर लेंगे। तो मन और अपना आत्मा की थोड़ी सी ये चलती रहती है। तो इसीलिए मन को जितना हो सके प्यार से, लड़िए नहीं, लड़ने के लिए बहुत कुछ है दुनिया में, सुबह से शाम तक कई चीजें आती है, तो अपने मन से लड़ने की जरूरत नहीं है, बट मन को प्यार से समझा करके इसको साथ लेके चलना। और इसमें नंबर वन मम्मा थी, मम्मा की मन जितनी अपने कंट्रोल में, और किसी को हमको ये सौभाग्य मिला, सिर्फ 5 साल ही रहा 1962-65 तक, और सबसे ज्यादा मुझे बैंगलोर में मम्मा 3 मास रही हमारे पास, तो 3 मास संपूर्ण मम्मा के साथ जैसे रहने का सौभाग्य मिला। हमने यही देखा संपूर्ण मन के ऊपर कंट्रोल है, तो वो हमने मम्मा में देखा। बाकी बाबा अभी इस समय पर हम बच्चों को उससे एक स्टेज आगे ले जा रहा है। मन का भी 2 स्टेज है अभी, एक संकल्प से याद करना, मन माना संकल्प, अभी बाबा के पास जाओ, अभी यहां जाओ, अभी वहां जाओ, तो मन को संकल्प से ले जाना एक है, पर दूसरी जो है दिल से, मैंने दिल से याद किया आज, तो इसमें थोड़ा सा अंतर है। मन से याद करना, दिल से याद करना, ये जितना आप देखेंगे ना, आज मैंने दिल से किया, खाना भी कभी कभी आज तो दिल से बहुत पसंद आया। तो दिल और दिमाग या संकल्प मन, इसमें थोड़ा अंतर है। इसीलिए जो तीसरा भगत याद कर सकते हैं हम, हनुमान जी का, हनुमान जी के दिमाग के लिए नहीं, इसका दिल का। तो ऐसे हम लोग कहानी में सुनाते हैं कि नारद ने कहा हनुमान जी को, भाई आपका तो नाम ही नहीं है हमारे भगवान के लिस्ट में। तो उसने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो दोनों गए कि भगवान से पूछा कि भाई देखो आपका हनुमान जी का नाम ही नहीं है इसमें। तो नारद खुश हो रहे थे कि भाई देखो मैं तो, परंतु भगवान ने कहा हाँ हाँ उसमें नहीं है, ये जो मेरे पास जो छोटा डायरी है ना वो उसमें है, क्योंकि जो दिल में है वो मन में है और दिल में है, इसमें अंतर है। हरेक का दिल में कई चीजें हैं और मन में कई चीजें हैं। तो दिल में जो है वो असली है, सही है, एकदम डीप है वो। तो मन तक और दिल तक इसमें भी थोड़ा सा अंतर है, इस पर आपको थोड़ा विचार करना है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अभी कोई इसको बहुत ज्यादा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये हरेक को अपनी साधना से मालूम होता है। दिल से बाबा को याद कैसे करे, संकल्प से बाबा को याद कैसे करे। दिल से जब याद करते हैं तो आप जैसे खो जाते हो, लगन मगन ये सब बातें जो है ना। तो दिल से बाबा को याद करने की जो अभ्यास है वो थोड़ा सा करते करते आ जाता है, सीधा नहीं आता है। इसीलिए अमृत वेला हम कभी भी मिस नहीं करते हैं, क्योंकि वहां दिल से याद करते हैं बाबा को, बहुत सहज सरल, बाबा और मैं और कुछ नहीं। सारे दिन में थोड़ा सा मिक्सचरिटी हो जाता है, क्या है, बाहर का वातावरण भी रहता है और कारोबार भी करना होता है। तो इसीलिए अमृत वेला जो है वो दिल से बाबा को याद करने का, दिल से बाबा से जो आप चाहे ले सकते हैं, और मन को भी पूरी तरह से आप अपना कंट्रोल कर सकते हैं। या सरल शब्दों में कहना हो तो अपनी मन को समर्पित करना हो तो सबसे अच्छा अमृत वेला टाइम होता है। बाकी सारा दिन के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, ट्रैफिक कंट्रोल है, हर घंटे में थोड़ा सा एक सेकंड भी याद कर लेते हैं तो अच्छा रहता है। जो भोग लगाते हैं भोजन के टाइम पर, ये सब चीजें जो बाबा ने जो हमको विधि सिखाए है ब्राह्मण लाइफ का, ये सब इसीलिए है कि ये मन को थोड़ा सा बाबा में लगे रहे। इसके लिए अभी अभी समय के अनुसार हमारी दादियां या जो बाबा की जो मुरलियां भी चली, बाबा एक ही बात पर इस समय पर हम बच्चों को थोड़ा सा प्रेशर दे रहे हैं, साइलेंस का। अभी तक हम लोग साइलेंस एक पावर है वो, क्योंकि संकल्प से आप कुछ भी करना है तो उसको जो बिजली है, जैसे बत्ती जलने के लिए जनरेटर से या पावर हाउस से यहां तक आ रही है, तो इसी प्रकार हमारे संकल्प को जहां भी जो भी जैसे भी आप चाहो उसका सिद्धि होना है तो उसके पीछे जो शक्ति है वो है साइलेंस। जितनी साइलेंस हम अपने अंदर उसको बढ़ाते जाते हैं तो उतनी हमारी संकल्प सिद्धि होती है। जो वचन है, कहते हैं जो संत है उसका एक शब्द कहना वो जैसे हो जाता है, बाकी टाइम पर वो लोग तपस्या में रहते हैं शांति में। तो इसीलिए हम बच्चों को भी समय के अनुसार हो सके, जितना हो सके साइलेंस पावर का थोड़ा सा, खुशी भी उसमें बढ़ती है। बाबा कहते थे कि भाई एक चुप सौ सुख, हमारी समझ में नहीं आता था ऐसा कैसा। आजकल तो कोई बोले तो उसको 10 जवाब हम तुरंत दे सकते हैं, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा है, हर बात का हमारे पास उत्तर है। तो हम किसी की बात सुन करके एग्री कर ले, अरे ऐसा है नहीं, तुरंत हम बोल देंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, बाबा ने ऐसा बोला है, ऐसा क्या। इतनी तेज बुद्धि है हम बच्चों का। पर ये बाबा क्या कहा कि भाई एक चुप सौ सुख, ये कैसा, अब समझ में आ रहा है। अभी तक हम लोगों को समझाते रहे फिर भी फेल है कई बार, क्योंकि देखते हैं ये फायदा नहीं है, कितना भी समझाए तो ये समझता ही नहीं है। पर जब से हम चुप रहना थोड़ा सा सीख गए, भले आता है पर नहीं, तो सामने वाला कंफ्यूज हो गया है, अभी ये बोलता क्यों नहीं है, तो अब पूछने शुरू करते हैं, तो बोलिए ना कुछ तो बोलो। तो आप मुस्कुराते हुए रहते हैं। तो इसीलिए ये जो साइलेंस पावर क्या है उसका अभी एक्सपेरिमेंट करने का टाइम आ गया है। तो इसके साथ मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि बाबा जो कहते हैं ना, बाबा की एकमात्र आशा हम सब बच्चों से इन रिटर्न, और कुछ नहीं चाहता है, बाबा ने सब कुछ हम बच्चों के लिए किया। अपने लिए चाहिए कुछ, बाबा को कुछ चाहिए जो तिरुपति में जाके सोना दो, ये हमारा बाबा को चाहिए वो सब, कुछ भी नहीं। फिर भी बाबा हम बच्चों से एक आशा रखते हैं, वो यही है कि हमको देख करके लोग कहे हाँ भगवान आ चुका है, यही है यही है, भगवान आ चुका है। तो ये तब कहेंगे जब हम चुप हैं और मुस्कुरा रहे हैं। चेहरा और चलन से बाबा ने कहा था ना, चेहरा कौन सा है, खुश है हम, चलन कौन सा है, बोल नहीं रहे, खुश है पर साइलेंस में है, देखते हैं बोल नहीं रहे। अभी तक हम लोग बोलते हैं, बहुत बोला, कितना ज्ञान सुनाया, कितना लोगों को समझाया, अब तो हम टीवी में छोड़ दिया है, भाई जाके देख लेना पीस ऑफ माइंड, समझ में नहीं आता है तो पीस ऑफ माइंड देख देना, हमारा माथा नहीं खाओ अभी, अभी हमको चाहिए साइलेंस पावर, हमको और कुछ नहीं चाहिए अभी। तो इसीलिए बाबा की प्रत्यक्षता करना, और बाबा हम बच्चों से यही एक अपेक्षा कर रहा है और कुछ नहीं, आपको देखते ही लगे कि हाँ भाई इनको कुछ मिला है, इनके पास कुछ है, ये छुपा रहे हैं, वो दिखाई दे। बाबा की प्रत्यक्षता की दूसरा कोई साधन नहीं है, हम बच्चे ही बाबा को प्रत्यक्ष कराना पड़ेगा। हम लोग अभी तक क्या करते थे कि भाई अबू चलो हमारी दादियां हैं, तो दादियों से तो आप लोग भी नहीं मिल पा रहे हैं, देखो ना अभी 2-3 दिन यहां हुए कोई दादियां नहीं आ रहे, तो समय बदल गया ना। परंतु अब बाबा कहते हैं हम सब बच्चों को बाबा की प्रत्यक्षता करने का एक ही साधन है। जैसे लास्ट का जो मैंने बताया ना, हनुमान का जो है वो अच्छा लगता है, चुपचाप बैठा है वो, मैं थोड़ा सा इसमें कमजोर हूं, क्योंकि धन जो है हरेक आत्मा के अपना भाग्य का, क्योंकि जो लेन देन जो होता है ना, तो वो अपनी भाग्य की अलग बात है। जो बाबा, जो बच्चे बाबा के साथ लेन देन हिसाब किताब, वो एक अलग ही वो हिसाब किताब है, जो वो अपना भाग्य बनता है। क्वेश्चन यही है कि भाई धन को हम कैसे समर्पित करें। ऐसा मुझे बाबा ने जो सिखाया, मैं थोड़ा सा बोल भी देता हूं। यूजुअली मैं उस सब्जेक्ट को कभी मैं टच नहीं करता हूं, क्योंकि हर एक की पर्सनल वो लेवल है, आप और बाबा। क्योंकि ये जो यज्ञ चला है ये गुप्त चला है, कभी भी इस हाथ का इस हाथ को नहीं मालूम पड़ा है, कौन क्या किया कैसे हुआ। यहां कहीं भी बोर्ड नहीं है, और इतने बड़े 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 बिल्डिंग बनते गए, हजारों सेंटर्स बनते गए, कहीं कोई नाम नहीं। क्यों? ये जो है धन का, वो इस हाथ का किया हुआ इस हाथ को मालूम नहीं, ऐसा बाबा कहते हैं। फिर भी एक छोटा सा कैलकुलेशन बाबा हमको बताया था। तो जैसे हमको जो भी हम कमाते थे उसमें हम चार भाग करते थे। एक जो है जो हमको अपना घर चलाने के लिए जो भी हमको खर्चा करना होता है, तो वो तो हमको करना ही है। परसेंटेज कितनी है ऐसा कुछ नहीं है, पर जो घर का जो खर्चा है, जो भी आप लोगों को करना होता है, उसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं तो बच्चे, नहीं तो हर एक में गर्मी ही थोड़ा सा ये हो जाता है। इसलिए घर चलाना ट्रस्टी होके, भगवान चलाता है तो कैसे चलाएगा, ऐसे सबको कुछ करके संतुष्ट रख के घर को चलाना, वो अपनी पर्सनल का है। वो एक भाग वो होता है। दूसरा जो होता है इमरजेंसी का, अचानक जो होता है, तो इसलिए हम लोग समझते थे भाई बैंक में रखेंगे, यहां रखेंगे, सेविंग्स करना वो हमको नहीं आता था। तो परंतु बाबा ने कहा नहीं, तो इमरजेंसी के लिए कभी भी ऐसी, आजकल तो बीमारियां ही आप जानते हो तो कैसे आ जाता है, कुछ भी नहीं पता होता है। इसलिए धन का उसके लिए भी हम लोगों को, जो सेविंग नहीं करता है, कई लोग गलती से सब कुछ इन्वेस्ट करके कमाने के इसमें जाते हैं, तो बाबा मना करते हैं। बोला कि भाई अपना इमरजेंसी के लिए आपको रखना ही पड़ता है। तीसरा, सबको शौक होता है तो हर सेंटर पे हर जगह में सेवा होता ही है, तो सेवा के लिए भी हम लोगों को हरेक का उसमें सहयोग है। नहीं तो कैसे करें, कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे तो उसका एस्टिमेशन होता है कि भाई इसको पैम्फलेट छपाओ, ये करो वो करो सब करो, तो ये कहां से आएगा। तो इसलिए सेवा के लिए हम लोगों को अलग हम रखते ही, भाई 1% इतना मुझे सेवा में लगाना है। प्लानिंग नहीं होगा तो जब आवश्यकता पड़ता है तो हम सेवा नहीं कर पाते हैं, तो फिर कैसे होगा। तो इसलिए सेवा का भी सोचना है कि जितना अपने से हो सकता है थोड़ा कुछ रेगुलर सेवा, क्योंकि उसमें रिटर्न मिलता है हमको तुरंत, जो सेवा करते ही आनंद मिलता है। और चौथा, एक बाग हम लोग ये सोचते ही है, सेंटर का भी हर एक का कंट्रीब्यूशन से ही चलता है, नहीं तो सेंटर कैसे चलेगा। यहां भी जब कहते हैं सेंटर खोलो, तो वो रमेश भाई कहते हैं लिस्ट बना बताओ, तो आपके पास इतने स्टूडेंट्स हैं, तो आप ये मकान का भाड़ा चला सकेंगे, मकान का खर्चा कर सकेंगे, तो तभी भी हम बच्चों का ही वो रहता है। या कभी कभी दादी बोल देती है 1 रुपया रोज डालो तो मधुबन बन जाएगा, एक भंडारा वो भी रखते हैं। तो इसीलिए आप अभी मधुबन आए हैं, तो कुछ तो भंडारे में ही डाल देंगे, ये कहां हिसाब, ये नहीं हो, आपने पहले ही नहीं सोचा हो तो ये कैसे करें। तो इस प्रकार बाबा हमको बहुत सरल ये एक शिक्षा हमको देते थे। तो तन का तो है ही है, मन का तो आपको बताया, धन का भी थोड़ा सा हमको बाबा ने ये हिसाब किताब बताया। जब भी मैं कभी ये सब्जेक्ट पे कभी जाता नहीं था, तो बहन जी ने कहा तो मैंने सोचा चलो मुझे बाबा ने जो सिखाया वो मैंने आप सबको सुनाया। तो फिर भी हर एक का अपना भाग्य की है, और एक दो को ये मालूम होने वाली बात नहीं है, ये जितना अपने इससे सहज सरल हो सकता है, क्योंकि कभी कभी सुनने में भी आता है कि भाई वहां पूछते हैं सेंटरों में कि भाई देओ देओ ये नहीं। तो इसीलिए बाबा ने हमको पक्का करा दिया है कि हरेक को अपने अपने हिसाब से अपनी रीति से अपना भाग्य बनाने का है, क्योंकि भाग्य बनाने का ये एक हमको, तो हमको पहले पहले सिखाते थे भोग करने का, आज भाई किसका भोग है तो ये गुरुवार इनका भोग है, इस तरह से हम लोगों को पहले पहले सिखाते थे। तो किस तरह से ये सेंटर और ये सब चलता है, यज्ञ का कारोबार, ये भोग वहां से शुरू हुआ है, तो आज भी यही रस्म हर जगह में चलता है, तो इसी से पूरा ये यज्ञ चल रहा है। तो ये हरेक का अपना है। तो मैं आपको एक और चीज जो इस समय पर हम सब दादियां या ब्राह्मण परिवार जो प्रयास कर रहे हैं वो इसी चीज पर है, जो अपनी मन की शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए कोई बैठ करके करने की बात नहीं है, वो तो है ही है, ये तो अमृत वेला करते ही है, और जब जब अभी तपस्या का पाठ चल ही रहा है ये तो सब हम करते रहेंगे, परंतु इसके लिए जब तक अपनी अंदर एक दृढ़ता प्रतिज्ञा नहीं, मुझे भगवान मिला पर मैंने क्या पाया, बाबा तो मिल गया आपको, बाबा के बारे में सब कुछ पता है, बाबा के बारे में सारी दुनिया को आप बता सकते हैं, परंतु भगवान से हमने क्या पाया। क्योंकि बाबा ऐसा तो नहीं है कि हरेक को कुछ दे दे देगा, ऐसा नहीं। तो बाबा ने बहुत सुंदर सिस्टम बनाया है, तो हरेक को अपनी मेहनत से ही पाना है। भगवान किसी को दे दे और किसी को ना दे ये नहीं हो सकता है, नहीं तो भगवान के ऊपर रुलाना आ जाएगा, तो उसको ऐसा क्यों किया, इसको ऐसा क्यों किया, हमको क्यों नहीं किया। तो इसीलिए भगवान ने सब कुछ बता दिया है। देखो अव्यक्त बाबा भी इस समय पर हम बच्चों को बहुत खुश करा रहा है, कई बार ऐसा लगता है कि क्या हुआ बाबा, कोई कान नहीं पकड़ा है, कोई ऐसी बाबा ने सावधानी की कोई बात नहीं बता रहा है जैसे पहले बताते थे, तो कुछ कर रहा है, महिमा कर रहे हैं सब बच्चों का। तो माना बाबा को भी जो बोलना था वो भी पूरा हो गया है। इस समय पर हम बच्चों को एक ही प्रयास करना है जो भगवान ने हमको कहा है, वो बनना अभी है। जैसे समझो सतयुग, ठीक है ये अभी पूरा हो जाएगा और सतयुग आ जाएगा। सतयुग में देवताओं का तो देख रहे हैं हम लोग, लक्ष्मी नारायण का स्वरूप हम देख रहे हैं, परंतु वो है ड्रेस, उस ड्रेस पहनेगा कौन, हम आत्माएं हैं। तो आप बताओ देवता अभी बनना है या वहां जाके बनना है। जो कहते हैं वहां जाके बनना है वो हाथ उठावे, अरे एक भी नहीं उठा रहे तो ये फाइनल कर दिया है ना। तो हम लोगों को यहां ही बनना है। ज्ञान में नंबर वन है, बाबा ने पास सर्टिफिकेट दे दिया, 100 मार्क दे दिया। दूसरा योग के लिए भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, देखो अमृत वेला भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके लिए भी बाबा ने पास मार्क दे दिया। सेवा में भी नंबर वन, इतनी सेवा बाबा करा रहा है पूछो मत, बहुत सेवा कराई बाबा ने। बाकी जो जिसको धारणा कहते हैं या दैवी गुण कहते हैं या देवता कहते हैं, तो देवता कहां है? यहां ही है। या कहीं बाहर है? भगवान को और कोई मिलने वाले नहीं है, यही है देवता। और बाबा भी देख के इतना खुश होता है कि भाई यही मेरा बच्चे हैं। तो इसीलिए हम बच्चों को भी पक्का स्टैंप लगा के जाइए कि देवता कोई और नहीं है, देवता सब यहां ही है। और हमारी ड्रेस भी रेडी है, देवता स्वरूप बिल्कुल रेडी है, हमको सिर्फ जाके पहनना ही बाकी है, बाकी कुछ नहीं। तो इसलिए ये भी थोड़ा सा, वो जितनी जितनी हम मन को शांत रखेंगे, साइलेंस पावर में जाएंगे, तो आप देखेंगे आपको अपना स्वरूप का साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा, और आपको देख के आपके भक्तों को भी देवता की साक्षात्कार होगा। शिव बाबा तो ज्योति है, ज्योतिर्लिंग ही है, दूसरा कोई रूप नहीं, पर इतना जो मंदिर बने हैं तो वो सब हम बच्चों का है, तो इसीलिए सब देवताएं यहां ही बैठे हैं, तो अपना साक्षात्कार भी अभी उसी से ही होना है। तो इसलिए साइलेंस पावर से अपना दैवी गुणों का धारण सहज हो जाएगा। हम थे ही देवता, हम है ही देवता, और भगवान ने इकट्ठा कर दिया सब जगह से, कैसे आए क्यों आए पता ही नहीं, आ गए, सब आ गए हैं। भगवान ने अपना काम कर लिया, अपने बच्चों को खींच लिया सबको, पर देवता बनना जो है, स्वरूप बनना वो हमको, तो इसलिए ये काम जो इस समय पर करना है। देखो दादियों को देखते हैं ना, और कुछ नहीं याद आता है, इतनी खुशी होती है बस देखते ही, क्योंकि वो स्वयं देवता स्वरूप फरिश्ते लग रहे हैं, मुस्कुराते हैं, देखते रहते हैं हम लोग। तो इसी तरह से हम लोग भी मुस्कुराते रहे, साइलेंस में रहे, और हमारी दैवी गुण लोगों को दिखते रहे, यही अभी हमको अभ्यास करना है। ठीक है, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सभी भाई जी का, बाबा मम्मा के मिसाल देकर के हम सभी को संपूर्णता, समर्पणमयता और संपन्नता की क्या स्टेज होती है उसकी क्लैरिटी दिया। आप सभी देख रहे हैं कि अभी समय शुरू हो गया है, बहुत ही सुंदर नुमा शाम का, जिस समय अनेक भक्त आत्माएं हमारा आह्वान करती हैं, अनेक दुखी और पीड़ित आत्माएं हमें पुकारती हैं, हर धर्म के लोग हमारा इंतजार करते हैं, तो ऐसा बहुत ही सुंदर साधना का समय शुरू हुआ है। हम सब अच्छी एकाग्रता से बाबा को साथ लेकर के विश्व सेवा पर निकलेंगे, क्योंकि जितनी समानता होती है उतनी ही प्राप्ति आत्मा अधिक कर सकती है। ठीक है ना, ओम शांति।